प्रार्थना में भाग लीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिल संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत विश्व के सारे भाषाओं में और विशेष कवर करके अंतर्राष्ट्रीय भाषा में उपलब्ध करके श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ा उपकार किया है। कृष्ण भक्ति का प्रचार विश्व में एक अनूठा अद्भुत एक आंदोलन है जिसके अंतर्गत यहाँ अरोड़ा परिवार रीना और उमेश जी अपने सुपुत्रों सात्विक और शुभम सहित सात दिन तक कथा का आयोजन किया है, सत्संग का आयोजन किया है। इस परिवार का आभार प्रकट करते हैं और जो श्रद्धालु प्रतिदिन अमृत भागवत अमृत जो स्वर्ग के अमृत से विलक्षण है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत पीने के बाद क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और भागवत अमृत भगवान के धाम में आनंदाम बुद्धिवर्धनम वो तो आनंद की वृद्धि करता है और भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। तो आप भागवत अमृत का पान करने के लिए पधारे, आप सबका स्वागत है। पहले स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में देखने में आते हैं। पांडवों के साथ भगवान जो स्नेह पूर्वक रक्षण उनका कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत कृष्ण का भक्त वत्सल या जो पहले स्कंद में दिखता है, ये फिर दो एक स्कंद से लेकर नौ स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देंगे भागवत में, तब भगवान के अन्य अवतारों का केवल दर्शन होगा। फिर दसम स्कंद और ग्यारह स्कंद में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो पहले स्कंद में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में पांडवों के साथ जो परस्पर संबंधों का आदान प्रदान कर रहे हैं वो भक्तों को निमंत्रण है कि भक्त भगवान के मित्र बन जाएं, सखा बन जाएं, सेवक बन जाएं, या कुंती महारानी जिसका आज अब वर्णन करेंगे, वो वात्सल्य मैया कृष्ण को अपना बालक समझती है, भतीजा समझती है, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम है, कृष्ण उनके लिए अपना बालक है, ऐसा भाव है। तो ऐसा संबंध जो और द्रौपदी का तो भगवान के साथ माधुर्य का भाव है, वैसे सखी है, तो ऐसा भगवान अद्भुत व्यवहार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ ये भगवान की विलक्षणता है कि वो त्रिलोकनाथ होते हुए भी अर्जुन के रथ के घोड़े हांकने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो ऐसा अवसर ढूंढते हैं कि भक्तों की सेवा का मौका मिल जाए, क्योंकि भक्त सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो परस्पर भगवान भी भक्तों की सेवा का मौका ढूंढते रहते हैं कि उनको कैसे रक्षण किया जाए। कल बहुत अच्छा हमारे सनातन कह रहे थे, जैसे जहां बछड़ा जाता है वहां गाय जाती है। भक्त वत्सल की परिभाषा है, वत्स कहते हैं बछड़े को। गाय जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो उसको चाट के साफ करती है। वैसे गाय का स्वभाव है अपने ही खाने के अंदर गोबर और गौमूत्र हो जाए तो गाय नहीं खाती, लेकिन अपने बछड़े के ऊपर सब कुछ लगा होता है, उन मल मूत्र गोबर खून कुछ भी है, लेकिन अपनी जबान से चाट के साफ करके उठता नहीं है। जब तक उसको दूध नहीं पिलाती है तब तक गौ माता उस पीड़ा से उठ के बच्चे को जन्म देते ही उसको चाटना शुरू करती है। ऐसे भगवान इस सृष्टि में जीवों को जैसे सृष्टि करते हैं, भक्तों को इस तरीके से सारे दोषों से साफ करते हैं और अपने चरणों का अमृत पिलाते हैं, जैसे गौ माँ अपने स्तन का दूध पिलाती है। तो इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। और दूसरा जो कल कहा कि जहां नई ब्याई गाय को लाना हो तो बछड़े को उठा के आओ, गाय पीछे चली जाएगी। तो जहां भगवान जाएगा, जहां भागवत जाएगी, वहां भगवान उनके पीछे भक्त जाएगा जहां, और भागवत जाएगी, भगवान उनके पीछे जाएंगे। यह अद्भुत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनके साथ श्रीमद् भागवत यहां से अमेरिका चला गया, तो बहुत से भगवान के श्री विग्रह और विशेष रूप से जगन्नाथ जी, जो अभी 25 तारीख को रथ यात्रा आने वाली है, जगन्नाथ जी भारतवर्ष से दौड़ते हुए प्रभुपाद जी के पीछे सैन फ्रांसिस्को जाके पहुंच गए। अपने भक्त को वहां जाके सहायता करके उसके कार्य को सफल करने के लिए भक्त के पीछे भगवान जाके वहां पहुंच गए। और पहले भगवान जगन्नाथ के लिए ऐसे कहा जाता है, कल युग में 5000 वर्ष तक तो गंगा पति तपावनी है, पतितों का उद्धार करेगा, लेकिन 5000 वर्ष पूरे हो गए अब, और कलयुग में 10000 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी के इस श्री विग्रह में भगवान श्री जगन्नाथ पति तपावन है। ये एक ही ऐसा भगवान का स्वरूप है जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ मंदिर से बाहर निकल के घूमने निकलता है, नहीं तो कहीं भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति बाहर नहीं आती है, श्री विग्रह बाहर नहीं आता है, लेकिन जगन्नाथ जी हर साल बाहर निकल के घूमने जाते हैं और दर्शन देने जाते हैं अपने भक्तों को जो अंदर नहीं आ सकते। तो ये भगवान यहां से भागते हुए वो अमेरिका पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद एक नहीं, फिर इसके तो कई ऐसे विग्रह आश्चर्यजनक ऐसे लगता है कि वो कैसे ठाकुर जी वहां पहुंच गए। इंग्लैंड के मंदिर की स्थापना का समय था कि बड़ी ठाकुर जी कहां से आएंगे, अब तो सब तैयारी हो गई, तो एक व्यक्ति फोन करके कहता है कि हमारे घर में एक हम लाए थे राधा कृष्ण और थोड़ा सा खंडित हो गए, हमने रखा नहीं, प्रभुपद के हम आते हैं अभी देखने को लिए। प्रभुपद उधर गए और वो तो बात कर रहे कि कितने की आई है, प्रभुपद कहते भगवान अपने आप आता है, किसी के पास पैसों से नहीं लिया जाता है। प्रभुपद ने अपने शिष्यों को इसको उठा के गाड़ी में रखो, बाद में बात करेंगे। वो तो लेके आए, रास्ते में आके देखा, बोला बहुत अच्छे हैं, वो राजा लंडनेश्वर करके लंदन में अभी तक विराजमान है। तो ऐसे कितने ही ठाकुर जी यहाँ भक्त के पीछे चले गए पाश्चात्य देशों में और आज पूरे विश्व के अंदर भगवान के केंद्र बने हुए हैं। तो भक्त के पीछे भगवान जाता है, भक्त बनना भगवान को आकर्षण भक्त की ओर होता है और भक्त को आकर्षण भगवान की ओर होता है, ये परस्पर उनका संबंध है। तो कल पहले स्कंद के अंतर्गत अभी हम श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित महाराज जैसे महान भागवत पुरुष के अवतार के पीछे तीन तीन माताओं की भक्ति की परंपरा है और पितृकुल में भी न तो पांडु सामवाने हैं, पांडु वेदव्यास का पुत्र है जो भगवान के अवतार है, और पांडु के पुत्र पांडव भी भगवान के भक्त हैं और देवताओं से अंश से उत्पन्न हुए, कोई भी पांडव का अपना पुत्र नहीं, अर्जुन इंद्र के अंश से, वायुदेव के अंश से, भीमसेन है, धर्मराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज विदुर के शराब से उत्तर पे धरती पे आए हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार है, तो ये भी कोई सामान्य नहीं है। तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सामान्य संसार का हो। ये तो भगवान की लीला में ये सब भागवत के अवतार की भूमिका है। जैसे वसुदेव और देवकी को कंस कंस के कारागृह में शक्तियों से गुजरना पड़ा श्री कृष्ण के अवतार के लिए, ऐसे आगे चल के हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज को संसारी दृष्टि से श्राप मिला, लेकिन वो सब लीला थी भागवत के प्रकट के लिए। तो कल तीन माताओं में से दो माताओं के भक्ति के भाव का हमने श्रवण किया, द्रौपदी की दया और करुणा और कोमल हृदय ब्राह्मण की प्रति, गुरुजनों की प्रति, और गुरु ब्राह्मण और भगवान के में जिसका विश्वास होता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता है, उसका सदा कल्याण होता है, गुरु ब्राह्मण भगवान ऐसे शास्त्र में वर्णन है। और फिर उत्तरा की शरणागति का अद्भुत दर्शन देखा, उत्तरा पांडवों के पास शरणागति नहीं, भगवान के शरण में सीधी गई, और भगवान ने उत्तरा के उदर में पांडवों के अंतिम अंश का संरक्षण किया, ब्रह्मास्त्र से पांच पांडवों को बचाया, और फिर प्रार्थना करने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो जा रहे थे हस्तिनापुर से द्वारका, वो युधिष्ठिर महाराज के वैंती को कुंती महाराज के स्नेह के साथ रुक गए, और तब कुंती महारानी ने अब तीसरी माता भागवत उसकी पहले विस्तृत स्तुति भागवत में है। भागवत में पहली प्रार्थना पहली स्तुति कुंती महारानी की है। तो कुंती महारानी पहले श्लोक में भगवान को कहती है नमस्यै पुरुषम त्वाद्यम, भगवान आप आदि पुरुष हो, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कुंती ये भी जानती है मेरे भाई वसुदेव का पुत्र है, लेकिन फिर भी कुंती के हृदय में ये निश्चय है कि जैसे इन्होंने हमारे पूरे परिवार की रक्षा की है, ये आदि पुरुष भगवान है। ईश्वरम प्रकृते है परम, आप संसार के नयनता हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति से परे हैं मतलब प्रकृति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। प्रकृति का प्रभाव है प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है जिसके अंदर संसार सारा बंधा हुआ है, लेकिन भगवान आप तो प्रकृति के स्वामी हैं, तो प्रकृति आपके ऊपर कैसे प्रभाव डालेगी। तो प्रकृति से परे है अलक्ष्यम सर्वभूतानां, ऐसे सामान्य लोग आपको पहचान नहीं सकते, ऐसे आपको पहचाना नहीं जा सकता है। अंतर बाहर अवस्थितम, आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और बाहर भी हमारे सामने खड़े हैं। इतना आसान है कि आप कौरवों की सभा के बीच में गए उनको समझाने के लिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप उनकी दिल में बैठे थे परमात्मा, और आपने अंदर से कहा कि हमारी बात मत मानना। बहुत बड़े हैं आप, चालाक हैं आप, संधि दूत बन के गए। अब आपको ना कैसे कर सकते हैं, आप ईश्वर हैं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप परमात्मा उनके हृदय में बैठे हुए अंदर उनको ऐसा पक्का कर दिया कि मैं कुछ भी कहूं आप कहना हम नहीं मानेंगे। क्योंकि पृथ्वी का भार तो उतारना था, तो कोई तो उसके लिए योजना बनानी थी, तो उस योजना के अंतर्गत आप हरे कृष्णा प्रकृति से परे हैं। और फिर एकदम कुंती महारानी कहती है क्यों लोग आपको पहचान नहीं सकते, अब जब सामने खड़े आपको क्यों नहीं पहचान सकते। तब कहते माया जवनी का छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्षय मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। आपकी माया सबको ऐसे पर्दा आंखों पे ढक देती है कि सामने खड़े हुए भी आपको पहचाना नहीं जाता। भगवत गीता में आता है भगवान कहते हैं ना हम प्रकाशति सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, योग माया से अपने को ढक के रखता हूं। बोले क्यों? कि ये मूर्ख अवज्ञा करेंगे और पाप करेंगे। बोला कोई बात नहीं, ये आपको नहीं देख सकते, आप इनको देख सकते। बोला मैं इनको देख सकता हूं। ये मुझे नहीं देख सकते, ये पर्दा आर पार का एक, वो मेरे को नहीं देख सकते, मैं उनको देख सकता हूं। संसार को माया ने ढक के रखा है, और इसलिए आप ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई अभिनेता स्टेज के ऊपर अभिनय करे। आपके अपने बच्चे कभी स्टेज के ऊपर ड्रामा करते हैं, आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है, ये किसका बच्चा है पूछते हैं, पता नहीं लगता है। उसकी जो जो वो अपना एक मेकअप करके आता है तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है कि आप नट की तरह मेकअप करके आए हैं और ऐसे बताते हैं मैं यदुवंशी हूं, हमको बताते हैं हम आपका पांडवों का भतीजा हूं, लेकिन आप हैं आदि पुरुष, ये मैं जानती हूं। अब कुंती महारानी यहां भगवान की भगवता का वर्णन करते हुए फिर कहती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमल आत्मानां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मयि स्त्रिय। अब कहती है आपके अवतार, ये सबसे मुख्य श्लोक है कुंती महारानी की प्रार्थना का, कि असल में आप भक्ति बड़े बड़े अमल आत्मा, अमल कहते हैं जिसका हृदय साफ हो, जैसे महात्मा, अमल आत्मा मतलब महात्मा जिसका हृदय साफ हो, मुनि नाम, मुनि मतलब जैसे व्यास मुनि है, ऐसे महामुनि जो है उनको भक्ति का, जैसे व्यास को नारद ने भक्ति का बताया, तो ऐसे मुनियों को भक्ति का रास्ता बताने के लिए अवतार आपका हुआ है। अब इतने बड़े ऋषियों को समझाने के, मैं स्त्री कैसे समझ सकती हूं, और कुंती महारानी समझ रही है, कह रही है, फिर भी कहती है हम स्त्रियां कैसे समझ सकती हैं, और ये उद्घाटन कर रही है कि आपका अवतार भक्ति के लिए है, क्योंकि वेदव्यास के द्वारा भगवान ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का रास्ता बता दिया, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थों के लिए, निवृत्ति मार्ग सन्यासियों के लिए, लेकिन भगवान ने भागवत मार्ग का मार्ग आके बताया। भक्ति का मार्ग भागवत मार्ग है, उसमें साधु सन्यासी भी चल सकते हैं, गृहस्थी भी चल सकते हैं, दोनों चल सकते हैं। और मानव तो मानव, कृष्ण के अवतार में गाय भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, हिरण भी कर सकते हैं, और राम अवतार में तो वो पक्षी गीधराज भी भगवान की सेवा कर सकता है, वानर भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो मानव भागवत धर्म का आचरण तो सब जीव कर सकते हैं। कालिया नाग को भी भगवान ने आश्रय दे दिया, तो सांप को भी जो शरण दे दे, तो भगवान तो सबका शरण में दे देते हैं, इतने दयालु है। तो भागवत धर्म का मार्ग सबके लिए खुला है, जैसे जैसे देश में राजा की सेवा, मंत्री से लेके झाड़ू निकालने वाले सब राज की सेवा कर सकते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं। भक्ति में किसी को बाधा नहीं है, यज्ञ सब नहीं कर सकते, वाजपेयी यज्ञ करना होगा तो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ करना है तो केवल क्षत्रिय कर सकते हैं, दूसरे को करने का अधिकार नहीं है। तो वेद में तो वर्ण आश्रम से विभाजन है, लेकिन भक्ति सबको करनी है, भक्ति करने का अधिकार सबको है। इसलिए आपका अवतार ही विशेष रूप के भक्ति के प्रचार के लिए है, आपने भक्ति का यहां विधान किया है। और ये कह के फिर कह दिया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये है नाम संकीर्तन। भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करना है, ये भगवान के नाम का कीर्तन है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये तीन विशेषण दिया। पहले सीधे कृष्ण बोला, बोला सीधा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सुनता नहीं है, तब कहते हैं वासुदेवाय, आप तो वासुदेव के और देवकी के पुत्र हैं। तो भगवान ने कहा, जा रहा हूं वसुदेव देवकी से मिलने, हाँ द्वारका जा रहा हूं बुआ। तब कहा नहीं 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 नहीं, नंद गोप कुमार आए। भगवान विचलित हो गए, ब्रज याद आ गई, एकदम रथ से कूदे नीचे। ये श्लोक सुनते ही कुंती महारानी का, अभी तक भगवान रथ के ऊपर बैठे थे, रथ से नीचे कूदे और भुआ जी के चरण पकड़ लिए, ब्रज की याद दिला दी, नंद गोप कुमार आए, और फिर गोविंद आए, नमो नमः, अये गोविंद मैं आपको नमस्कार करती हूं। तो भगवान के नाम का कीर्तन कोई कैसे भी करे, तो ये भगवान का नाम संकीर्तन कर रही है। और इसमें भी विशेष रूप से भगवान नंद गोप कुमार सबको इतना सुलभ है क्योंकि गैया चराते हुए जंगल में तो कोई गरीब किसान भी देख सकता है, कोई बुढ़िया माई भी देख सकती है, भीलनी जो फल चुनती है वो भी देख सकती है। तो इतना आसानी से भगवान जिसको मिल जाए राजकुमार के रूप में है, राम जी तो राजमहल रहते हैं, सबको मिलना इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान नहीं है। और वासुदेव और देवकी के वहां भी राजमहल में रहते हैं, इतना आसान नहीं है। लेकिन नंदगोप कुमार तो इतना सरलता से मिलते हैं कि कहीं भी किसी, आज भी ब्रज में लगता है किसी नुक्कड़ के ऊपर कहीं खड़े बांसुरी बजाते होंगे, ऐसा ब्रज। अभी तो ब्रज को बिगाड़ के सारा पत्थरों का जंगल बना रहे हैं, लेकिन जब गोस्वामी के समय ऐसे अभी भी कहीं ब्रज की किसी कुंज गली में जाएंगे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कृष्ण बांसुरी बजाता होगा कि गैया चराता होगा, ऐसा भाव जिसका होता है उसके हृदय में ये स्फूर्ति होने लगती है ब्रज के अंदर। तो ये गोविंद बहुत सरलता से सबको मिल सकता है। और इसके बाद कुंती महारानी आगे कहती है, नमः पंकज नाभाय। ये भगवान आप सृष्टि करते हैं, पंकज नाभ का मतलब आपकी नाभि से कमल निकलता है, जो निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो आप ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण है, आप सृष्टि का कारण है। नमः पंकज मालिने, आपके गले में कमल की माला पहनी हुई है। देखो पहले नाभि का, फिर कहती है नमः पंकज नेत्राय, आपके आंख भी कमल के पत्तों जैसी है बड़ी बड़ी। और आखिर में कहती है नमः ते पंकज अंग्रेय, आपके चरण कमलों में प्रणाम। पहले चरण कमल कहते भगवान थोड़ा सा संकोचित हो जाएंगे, भुआ कैसे मेरे चरणों में प्रणाम करेगी। तो पहले नाभाय कह के, फिर मालिना कहे, फिर नेत्र, फिर चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो भगवान ने कहा भुआ हो क्या गया है, अच्छी भली हो, क्या कहती हो, ऐसे थोड़ी कभी हम आपके चरण छूते हैं, आप हमारे चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं। तो भगवान को कहती है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धास त्रिचं सुचारपित विमोचिताहं सह च सहात्मजा विभो तव्यैव नाथेन मोह विपद गणात। अब तो कहती है मैं क्यों प्रणाम करती हूं, आप पूछते हो कि हे ऋषिकेश खलेन देवकी को इस खल कंस ने कितना संकट दिया, तब आपके जाके देवकी का उद्धार किया, उससे ज्यादा तो आपने मेरे ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर कृपा की, कोई संकट नहीं आया और हमने आपकी ज्यादा हमारे ध्यान दिया। देवकी के साथ वसुदेव था तो आपने उनको, तो बहुत समय के बाद कंस के 11 साल तक तो आप गए नहीं, 11 साल तक देवकी और वसुदेव तो कंस के कारागार में रहे, लेकिन हमारे बच्चों को सहात्मजा, मुझे और मेरे बच्चों को, हे भगवान हे नाथ, आपने बार बार विपत्तियों से बचाया। मतलब आपने अपनी मां देवकी से ज्यादा हमसे स्नेह किया, बार बार आपने, एक बार नहीं बार बार। भगवान ने बोला कब बार बार, तब पूरी कथा बताएगी कि कब बचाया। विषम महा अग्नेह पुरुषा दर्शनात्। अब तो कह दिया भीम को विष दिया बचाया, फिर महादावागन अग्नि से बचाया, फिर राक्षसों से बचाया, और क्या क्या पूरी गिनती कराए, मृदे मृदे अनेक महारथी कितने थे तो महाभारत के युद्ध में, भीषम द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलोत पला शल्य। अरे महाभारत की नहीं, युद्ध की तो ऐसी भयानक नदी थी जिसका एक किनारा भीषम एक किनारा द्रोण, और ये दो किनारे पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों परशुराम के शिष्य थे, और तीसरा कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य थे। अश्वस्थामा आज तक नहीं मरा है, अभी तक जीवित है, ये सब इच्छा मृत्यु का वरदान लेके खड़े थे। इनके बीच में आपने कैसे हमारे पुत्रों को विजयी बनाया, ये आश्चर्य है। कहें आप कैसे कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम नहीं करूं, आपने कैसे हमारी रक्षा की है ऐसी परिस्थितियों में। और फिर कहेंगे मेरी, और इसके बाद अभी अभी मैंने देखा, इसे बीच में कहते हैं असत्य सभायाम, असत्य सभायाम वनवास। असत्य सभा का मतलब द्रौपदी का जब चीरहरण किया जा रहा था, असत्य सभा थी वो, उसमें आपने उसकी कैसे लाज बचाई। और फिर वन में वनवास, वनवास कृष्ण, वनवास में कितना संकट आया, हर समय आपने कैसे रक्षा की। तो ये कुंती महारानी को भगवान की सारी एक एक क्षण की याद आती है कि आपने अब कहते अभी अभी द्रोणाचार्य के बेटे के ब्रह्मास्त्रों से मेरे पुत्रों की और मेरी पुत्र वधु के अंदर पांडवों के कुल की रक्षा की है। तो भगवान ने कहा तो आप हमारी अपनी है, रक्षा की है, तो आपको चाहिए क्या बुआ। तो कहते हैं आपको कुछ देना है, हाँ जो कहो बुआ दे दो। तो अब क्या मांग रही है कुंती, ऐसा आज तक दुनिया में किसी ने भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा है। कुंती की आशीर्वाद क्या है, विपद संतो तहा शश्वाद। आज तक जो हमारे को कष्ट आए ना, ये विपत्तियां आए ना, ये बार बार आए, अरे माँ क्या कहेगी, ऐसा लगता है कि तकलीफ सह सके, अभी तकलीफ ही तुम्हारी जबान पे आती है, तुम्हारे को सुख मांगना ही नहीं आता है। कि आदमी जब तकलीफ ज्यादा सहता है तो उसको तकलीफ ही दिमाग में होती है। क्या माता जी तो क्या पूछ रही, भूल तो नहीं गई क्या मांगने, नहीं मैं समझ के पूछ रही हूं। तत्र तत्र जगत गुरु, हे भगवान आप जगत गुरु है, वंदे कृष्ण जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं समेष्टि गुरु, समेष्टि गुरु का मतलब सब जगत के गुरु। और जो किसी व्यक्ति विशेष का गुरु होता है उसको कहते हैं वैष्टि गुरु। तो वैष्टि गुरु होता है जैसे किसी पति का पत्नी का पति, तो पत्नी का पति है तो उसको उसका पति पात्यते इति पति, मतलब जो रक्षा करे। और पत्नी का अर्थ है जो पतन से पति को बचाए, पत्नी की परिभाषा है जो पति को पतन से बचाए, और पति की परिभाषा है जो अपनी पत्नी का रक्षण करे, पात्यते इति पति, पतन से बचाए पत्नी। तो व्यक्ति गुरु, व्यक्तिगत गुरु जो है वो आपकी शिक्षा के, आपके संरक्षण के, आपकी आत्मा के बचाने के लिए है, आत्मा को सद्मार्ग के ऊपर चलाने के लिए। लेकिन प्रचार करना है तो जगत गुरु का करना है, प्रचार श्री कृष्ण का करना है, भगवत गीता का करना है। संसार में क्या होता है कि प्रचार भगवान का छोड़ के लोग गुरुजनों का प्रचार करना शुरू करते हैं, तो वो प्रचार करने से अलग अलग पंथ बन जाते हैं, मेरा गुरु तेरा गुरु ये पंथ हो जाता है। तब कुंती महारानी कहते हैं आप जगत गुरु हैं, प्रचार आपका, प्रचार समेष्टि गुरु का, शिक्षा वैष्टि गुरु की। वो मेरा अपना व्यक्तिगत गुरु है, तो भगवान के प्रचार करने से सब साथ रह सकते हैं, तब एकता आ सकती है धर्म के मार्ग के अंदर। तो ये धर्म में एकता के लिए सबसे मुख्य, भगवद गीता का प्रचार सबको एक कर सकता है, क्योंकि भगवान का प्रचार है उसमें, तो व्यक्तिगत नहीं। तो भवतो दर्शनम यद स्याद, बोला आपको विपदी क्यों मांग रही है, बोला उस वक्त जब तकलीफ आती है तो आप याद आते हो, आप आ जाते हो, तो आपके दर्शन का तो यही रास्ता है। अब हमारे को राज मिल गया है, हमारा पुत्र अभी राजा बनने वाला है, और आप द्वारका जा रहे हैं, तो इससे तो वो दुख अच्छे थे, आप हमारे साथ तो थे, तो आपसे दुख नहीं मांग रही है असल में कुंती महारानी। कुंती महारानी भगवान का दर्शन मांग रही है, भगवान का सानिध्य मांग रही है। लेकिन उस सानिध्य के लिए भक्त को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और उस परीक्षा के लिए कुंती अपने आप को तैयार है, मैं तैयार हूं। और तब कहती है, भगवान कहता है फिर क्या, मेरे दर्शन से क्या लाभ होगा, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं क्या लाभ होगा। तब कहते अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन होने के बाद फिर भव, भव मतलब संसार सागर, भव मतलब जन्म मृत्यु, आपके दर्शन के बाद कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। तो तकलीफ एक बार आए और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से बच जाए, ये अच्छा है ना, अभी सुख देखें फिर कुत्ते बिल्ले के शरीर में आके इधर धक्का खाएं, इससे तो अच्छा है अभी कोई कष्ट सह लें, फिर भगवान तो आपके धाम में रहें और कभी कोई तकलीफ नहीं आए, तो वो अच्छा है ना। तो कुंती महारानी की ये प्रार्थना बड़ी विलक्षण है, इसको गुरबाणी में संत गाया है, दुख दारू सुख रोग भया, दुख दारू, दारू का मतलब दवाई, सुख रोग भया, सुख बीमारी है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना के भागवत के भाव को गुरुजनों ने लिखा है। दुख दारू सुख रोग भया, सुख रोग है क्योंकि भगवान भुला देता है, दुख दारू है क्योंकि भगवान याद दिला देता है। तो ऐसे कुंती महारानी की विलक्षण प्रार्थना आगे चलती है। कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करके कहती है, अब मेरा संबंध यदुवंशियों से पांडवों से दूर हो जाए, मैं एकाग्र होके आपकी चिंतन करूं। तो भगवान ने कहा, मैं भी यदुवंशी हूं, क्या मेरे को भी भूलना चाहती हो? बोला, नहीं 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 नहीं, आपके अंदर तो मेरी वृत्ति ऐसे लगी रहे अटूट, जैसे गंगा गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर जाती है, उसमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं उसको रोक सकती है। ऐसे मेरी मन की वृत्ति, मेरी बुद्धि का चिंतन केवल बगैर किसी रास्ते में रुकावट के आप में ही लगा रहे भगवान। तो ये जो कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक है, इसका बहुत सुंदर है। और इस बीच में कहते हैं, भगवान आपके अवतार के क्या क्या कारण है, क्यों आपने अवतार लिया है? और श्रील प्रभुपाद इतने दयालु थे कि उन्होंने कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के ऊपर पूरा कोई महीना एक प्रवचन करके एक किताब लिखा, कुंती महारानी की शिक्षा। फिर तीसरे स्कंद में देवहूति माता को कपिल देव का जो शिक्षा है, जो भागवत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की उपदेश की प्रणाली है, जो भगवान कपिल देव ने एक माता नारी देवहूति को दिया है, उसके ऊपर भी महीना भर सत्संग करके एक पुस्तक छापा कि देवहूति को, इसका मतलब माताओं को विशेष भागवत में स्थान है और प्रभुपाद ने उसको समझ के ये पुस्तक के रूप में माताओं के मार्गदर्शन के लिए धारावाहिक प्रवचन महीना महीना करके इनको अलग दिया है। तो ये बहुत बड़ा विशेषता प्रभुपाद जी की है। उन्होंने जो अभी तक भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये विधान है नहीं, लेकिन पाश्चात्य देशों में क्योंकि लड़कियां अकेली हैं तो उनके लिए आश्रम बना लिया, ब्रह्मचारिणी आश्रम। कहीं वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारिणी आश्रम नाम है नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने दया करके कि ये लड़कियां बाहर घूमेंगी तो लोग इनका शोषण करेंगे, तो इसको कम से कम आश्रय देना चाहिए और उन बच्चियों की स्वाभिमान बढ़ाने के लिए ये जो नारियों की शिक्षाओं के प्रसंग को प्रभुपाद ने महीनों महीनों तक प्रवचन किया। और कितने उनके हृदय में दया का भाव था, एक आश्चर्य लगता है। एक गर्भवती स्त्री प्रभुपाद के पास आई और कहा, स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बन के कृष्ण भावना में आनी चाहती हूं। प्रभुपाद ने कहा, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका पति कहां है? तो बेचारे मुंह नीचे करके बोलती, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। प्रभुपाद जी कहते, गर्भवती स्त्री को पति छोड़ के गया, अब आपका पालन पोषण कौन करेगा? प्रभुपाद गंभीरता से चुप रह के फिर जो शिष्य बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरे शिष्यों में कोई इसके साथ विवाह करे और इसका संरक्षण करे, ऐसा कभी इतिहास में सुना है? और एक प्रभुपाद का शिष्य उठा, कहा, प्रभुपाद गुरुजी, मैं इसका पाणी ग्रहण करके इसकी रक्षा का भार उठा। आश्चर्य है कि उन्होंने, और ये सत्य, उसने संभाला उसको। एक और लड़की 18-20 साल की लड़की आई, प्रभुपाद जी मैं तो आपके शिष्य बन के सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने दूसरी शादी की है, मेरा भाई छोटा है, वो 13-14 साल का है, उसको तो ले नहीं सकते हम, लेकिन मुक्ति में उसको छोड़ के आऊंगी तो उसको वहां कष्ट होगा। प्रभुपाद ने सोचा कि ये बिचारी भगवान की सेवा में आने रही, उसका बच्चा छोटा है, उसको हम ले नहीं सकते, क्या करना चाहिए? तो 19 साल की होगी मालती और श्याम सुंदर को 21-22 साल का होगा। तो मालती को कहते हैं श्याम सुंदर आप ऐसे करो, इस 16 साल 15 साल के बच्चे को गोद में ले लो, इसको आप अडॉप्ट करो, आप अपना बच्चा। अब वो 18 साल की मतलब 15 साल का बच्चा, उसने कहा मेरा लड़का, उसको अडॉप्ट किया, उसको स्कूल में दाखिल कराया, उसको पढ़ा के जब जवान हुआ तब छोड़ा। तो एक व्यक्ति भी भक्त होने के लिए आए, उसकी समस्याएं जो पीछे है उनका भी समाधान किया। ऐसे नहीं है केवल आत्मा है हम और शरीर को पीछे छोड़ के नहीं आते, शरीर की समस्याओं का भी जितना ध्यान दिया है बहुत आश्चर्य लगता है। तो भगवान यहां सबके संरक्षण कर रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, उनके सारे कल्चर का, उनके सारे परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ा जो है कुंती महारानी की प्रार्थना के माध्यम से प्रभुपाद ने उन विदेशी माताओं को बड़ा आश्वासन दिया कि देखो कितना भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान कितना इनसे प्रेम करते हैं। तो ऐसे बहुत उनका जो श्री प्रभुपाद जी का देन है संसार को, ये बहुत बड़ा विलक्षण है, कल्याणकारी है। उस दृष्टि से शिक्षा भी उनको दिया और साथ में स्वाभिमान भी दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुंती महारानी प्रार्थना के बाद इसके बाद भगवान रुक गए। तो अब सारे कौरव पांडव दोनों की स्त्रियां और पुरुष गंगा के किनारे अपने वीर गति को प्राप्त बेटों को, भाइयों को, पतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए गए। तो आगे स्त्रियां थी, नाम लिखा है कुंती, गांधारी, द्रौपदी, ये सब। अब तो दोनों कौरव पांडवों की स्त्रियां साथ थी और पीछे पुरुष चल रहे थे, और गंगा के किनारे हरेक अपने अपने स्वजन का नाम लेकर और उसका आवाहन करके तर्पण करके जल दे रहा था। तो व्यास देव वहां आए, धौम्य ऋषि आए पांडवों के, उनको सांत्वना दी। महाभारत में तो लिखा है कि व्यास देव ने सारे के सारे उन युद्ध में वीर गति वालों को प्रकट करके दिखाया सबको कि ये सब देखो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अब इनको, और सबने भगवान का दर्शन किया है इसलिए अब इनकी सदगति हो गई, आप इनके लिए चिंता मत करो। महाभारत में तो ऐसा है, लेकिन भागवत में लिखा है, क्योंकि महाभारत और भागवत में एक कल्प का भेद है, एक दिन ब्रह्मा का अलग अलग है, इसलिए दोनों के कथाओं में थोड़ा सा अंतर है, कल्प भेद का अंतर है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण अवतार आए तब कुछ और हुआ, दूसरे दिन में अवतार किया तो कुछ लीलाओं में और स्थान में अंतर है, इसको बोलते हैं कल्प भेद का अंतर है। तो वहां जब वो सब तर्पण कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज भी घुटने भर जल में खड़ा था गंगा में और अपने पुत्रों को तर्पण करना था और सबको, अब तो कोई कौरवों में बचा नहीं, तो उन भाइयों को भी तर्पण करना था, गंधारी साथ गई थी। तो कुंती आस्ते आस्ते स्त्रियों से अलग होकर सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंच गई और कहा बेटा एक अंजलि जल कर्ण को भी अर्पण कर। युधिष्ठिर कहते हैं मां कर्ण से हमें क्या लेना। कुंती कहते हैं बेटा आपका बड़ा भाई, कर्ण आपका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर माता आपने इतना अन्याय कर दिया, मेरा बड़ा भाई था, मुझे मालूम होता तो मैं राज उसको दे देता, ये झगड़ा ही नहीं होता। कुंती महाराज ने कहा मैंने उसको कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को कहा था, भीष्म पितामह ने भी कर्ण को बताया था, लेकिन कर्ण ने एक ही उत्तर दिया, मैं इतना ऋणी हूं दुर्योधन का, युधिष्ठिर तो मेरे को दे देगा राज, लेकिन मैं दुर्योधन को दे दूंगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपके अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। वैसे भीष्म पितामह लड़ाई से पहले गंगा मां के सामने रो के कह रहे थे अब मैं क्या करूं, मुझे मालूम है कि कृष्ण जहां है वहां धर्म है, और उस वक्त कृष्ण ने प्रकट होके भीष्म पितामह को कहा, पितामह आपने पहले राज के दो टुकड़े किए क्यों? आधा पांडवों को आधा कौरवों को दिया क्यों? आपने इंद्रप्रस्थ को अलग क्यों किया हस्तिनापुर से? आप अधिकारी थे, आपने ब्रह्मचार्य का वचन कर लिया, फिर भी मालिक थे, आप कुछ भी कर सकते, आपने क्यों किया? और फिर जब युद्ध से पहले विदुर युद्ध छोड़ के चला गया, नहीं करूंगा, तब आप चले गए होते? अब इस परिस्थिति में एक ही तरीका है, आप मेरी सेवा कर सकते हैं, आप कौरवों की तरफ रहेंगे, तब उनको साहस होगा, तभी उनका विनाश हो पाएगा, नहीं तो विनाश नहीं होगा। इसलिए भीष्म पितामह कौरवों के तरफ के सेनापति होके लड़े, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में उनकी शुमार होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी भक्त कितनी भी निंदा सहकर, अपनी बदनामी सहकर भगवान का कार्य करता है। उसका एक उदाहरण ये भीष्म पितामह एक ही है, जो राम को वनवास, राम की इच्छा से केकई ने वनवास दिया है। केकई की इच्छा से राम वनवास में नहीं गया है, राम की इच्छा से केकई ने वनवास दिया है। और कितनी निंदा सही है भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए। कहते छोटे बच्चे क्या, जब 10-12 साल के राम जी थे, केकई की आंखें पीछे से पकड़ ली, जैसे बच्चे पकड़ते हैं मां की, तो मां ने कलाई को पकड़ के देखा, ये तो मेरे राम की कलाई है। बोला हाँ मां ठीक है, आंखें तब खोलने छोड़ूंगा जब एक वचन दोगी। बेटा क्या प्राण, मेरे तो प्राण से प्यारे हो, मेरे लिए तो दोनों आंखों के तारे हो भरत, और आप क्या चाहिए? बोला मेरी माँ कौशल्या तो मुझसे इतना स्नेह करती है, ये काम कर नहीं पाएगी, और मेरे अवतार का उद्देश्य जब तक मैं वन में नहीं जाऊंगा ऋषियों का संघर्ष धर्म स्थापन करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम, ये साधु ऋषि हैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा, और दुष्ट रावण आदि का संहार नहीं करूंगा, तत्पर मेरे अवतार पूरा उसका फल नहीं होगा, और ये काम आपको करना है कि आप मेरे को 14 साल वनवास दें। और 14 ही साल वनवास क्यों देना, क्या थोड़ा कम से काम चल जाएगा? तब भगवान ने कहा नहीं, मेरे वो मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 साल से अधिक ब्रह्मचार्य का पालन करे, सोए कभी नहीं और कभी कुछ खाए नहीं, तभी वो ये संभव हो सकता है, नहीं तो मेघनाथ का वरदान है कोई वध नहीं कर सकता है। और लक्ष्मण न खाया न सोया और ब्रह्मचार्य का पालन किया। तो एक दिन तो भगवान रामचंद्र ने पूछ लिया लक्ष्मण से, मैं रोज भोजन करने के बाद आपको भोजन देता था ना? बोला आप हमको देते थे, हम वन को वापस दे देते थे। तो हनुमान जी को कहा कि लक्ष्मण के हाथ से छूटा हुआ भोजन पड़ा होगा, जहां होगा जाके इकट्ठा करो। तो जो कंदमूल फल लक्ष्मण ने फेंका था सब इकट्ठा हो गया, 14 साल का 2 दिन का कम था। तो राम जी ने कहा ये 2 दिन का कम पड़ रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा याद करो भाई, एक दिन पिता के देहांत का समाचार भरत लाया, आपने कुछ खाया नहीं इसलिए मुझे दिया नहीं, और एक दिन सीता का हरण हुआ उस दिन आपने नहीं खाया हमको दिया नहीं, यही 2 दिन कम है, बाकी जो आपने दिया वो हमने वन को दे दिया, वन में सुरक्षित पड़ा, खाया नहीं कभी। कितना केकई को लोग, केकई को दशरथ ने तो बुरा कहा, भरत पे बेटे ने बुरा कहा, गुरु वशिष्ठ ने बुरा कहा, लेकिन भगवान राम ने कहा जिन्होंने संतों का संग नहीं किया है वो मेरी माता को बुरा कहता है। और कवि तो कहते हैं जब वनवास से भगवान वापस लौट के आए तो पहले केकई के कक्ष में गए, चरण छुआ और फिर कौशल्या को प्रणाम किया। भगवान और भगवान के भक्तों को किसी से द्वेष नहीं होता। तो कभी कभी भगवान के काम के लिए कलंक भी उठाना पड़ता है। तो भीष्म पितामह ऐसे तो बात कर रहे थे कर्ण की, तो युधिष्ठिर महाराज ने तो आंखों में आंसू बहते हुए कर्ण को अंजलि देते हुए कह दिया, मां आपने ये बड़ा अपराध कर दिया, हमको इतने बड़े धर्म संकट में डाल दिया, मैं आपको धर्मराज शराप देता हूं कि स्त्रियों के हृदय में कोई बात छुपी नहीं रहेगी आज के बाद, आपने इतने दिन छुपा के बड़ा संकट पैदा कर दिया। तो ये धर्मराज के मुख से स्त्रियों के लिए वरदान निकला कि उनके दिल में कुछ रहेगा नहीं। हरे कृष्णा, हाथ पैर बाहर उठा के क्या करेगी, दिल में रख के क्या, निकल जाए तो अच्छा है। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ा दुख हुआ, एक तो सबको रोते हुए देखा, फिर कर्ण वाला ये प्रसंग आ गया, तो महाराज कहते हैं मैं क्यों राज करूं, इतने सारे लोग मारे गए मेरे कारण, कितनी बहनों के भाई गए, कितनी पत्नियों के पति गए, कितनी माताओं के बेटा गए, मैं इतने सारे नरसंहार का कारण हूं और इस राज के लिए। तो व्यासदेव समझाते हैं, उनका गुरुदेव धौम्य जो पुरोहित है वो समझाते हैं कि नहीं नहीं, जैसे ब्राह्मण यज्ञ के अंदर बलि देता है पशु की, उस पशु को सदगति मिलती है, ऐसे क्षत्रिय युद्ध भूमि में रणभूमि में जब लड़ता है तो किसी को वीर गति को पहुंचाता है तो यज्ञ के बराबर है। आप ठीक कह रहे हैं, क्षत्रिय का युद्ध यज्ञ के लिए होता है, लेकिन राजा का यह धर्म है, मैं राजा नहीं था, राजा तो दुर्योधन था, मैं तो नहीं था, तो महाराज आप यज्ञ कर लीजिए पापों से। तो बोला यज्ञ करने से पाप कैसे धोएंगे, शराब के बर्तन को शराब से मांजने से साफ थोड़ी होगा। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे, और उन बातों के लिए रो रहा है जिन बातों के लिए अर्जुन युद्ध से पहले रो रहा था, वही बातों के लिए युधिष्ठिर युद्ध के बाद रो रहा है कि क्या हो गया, नहीं समझा। तब भी फिर वही बात लिखी है आचार्यों ने कि भगवान श्री कृष्ण बाहर से तो कह रहे थे सुन लो, लेकिन अंदर से उनके परमात्मा के रूप में बैठे हुए कहते किसी की बात मत मानना। तो इसलिए युधिष्ठिर कह रहा नहीं नहीं मैं राज नहीं करूंगा। तो एक दिन रात के समय, ये पहले दिन कथा में आपको बताया था, युधिष्ठिर को नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि कृष्ण के पास जाऊं, तो कृष्ण के कक्ष में चला गया तो कृष्ण बैठा था और ध्यान में बैठा था, तो वाला ये क्या वासुदेव किसका ध्यान कर रहे हो, अभी तक जाग रहे हो, मैं तो बड़ा नींद मेरी तो खराब थी, मैं दुख में हूं, चिंता हूं, आपको क्या चिंता है। बोला मेरी चिंता नहीं है, मैं भीष्म का चिंतन कर रहा हूं, वो प्राण त्यागने का संकल्प कर रहा है, चलो उसको दर्शन देना है। और दूसरे दिन पांडवों को लेकर और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में उस स्थान पे पहुंचे जहां आज कुरुक्षेत्र में जो ज्योतेश्वर तीर्थ है, जहां बड़ा एक वट वृक्ष है, वो तो वहां वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वहां से 1 किलोमीटर और नजदीक आएंगे कुरुक्षेत्र शहर की तरफ, तो अंदर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसको बाण तीर्थ कहते हैं, तो जहां अर्जुन के बाण से गंगा प्रकट हुई है, तो वहां भीष्म देव का मंदिर बना हुआ है। कई साल पहले हम जाते थे, इतना नहीं, अब तो सुंदर मंदिर बना दिया है, सरसैया के ऊपर भीष्म देव सोए हुए हैं और पास में वो बाण गंगा बनी हुई है। तो वहां कल हमने आपको ये सिद्धांत स्थापित करके हुए बताया था कि कृष्ण और भागवत समान है, तो सारे ऋषि ब्रह्मांड से आए, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस जमाने में इतनी सक्षम थी कि सत्य लोक तक समाचार पहुंच गया कि भीष्म जा रहे हैं। तप लोक जन लोक वहां से जो ऋषि रहते हैं सब उतर के नीचे आए, और भीष्म पितामह जैसा 400 साल से ऊपर इस धरती के ऊपर जिया है तो बड़ी बात नहीं है, 4 पीढ़ियों को देखा है और इच्छा मृत्यु का वरदान है, और ऐसा पितृ भक्त है, आज प्रायण के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई अद्भुत बात जरूर होगी। तो सारे ऋषि वहां आके बैठे हैं, और तब पांडव आए हैं और पांडवों को देख के प्रसन्नता हुई है भीष्म पितामह को, और युधिष्ठिर को राजा का मुकुट पहने हुए देखकर, हस्तिनापुर के सिंहासन के ताज को देखकर प्रसन्नता हुई है, कृष्ण का पूछा है, और जब कृष्ण का पूछा तो कृष्ण की ओर देखा तो आंखों में कृष्ण ने कहा पितामह इसको समझाओ ये राज नहीं कर रहा है। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। तो फिर भीष्म देव ने पूछा महाराज युधिष्ठिर आप तो धर्मराज हैं, आपके भाई आप सब धर्म के ऊपर चलने वाले, आप ब्राह्मण सेवी ब्राह्मण भक्त पुरोहितों की आज्ञा में चलने वाले, और आपके भगवान श्री कृष्ण केवल सखा नहीं भाई नहीं लेकिन संदेश वाहक भी हो जाते हैं, और आपके लिए ये श्री कृष्ण सारथी भी बन जाते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतने संकट आए, इतने आपने कष्ट भोगे। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ कहा नहीं, केवल देख रहा था पिता माँ की तरह। तो पिता के मैंने कहा बेटा ये जितने कष्ट आए हैं ये सब काल बड़ा बलवान है, समय इतना बलवान है, काल इतना बलवान है कि काल के सामने किसी की दाल नहीं गलती, काल के चक्कर इतना है कि कभी तारा थी राज की रानी, बनी धोबियानी, धोए कपड़ा किना, ये जो गंदे कपड़े धो रही है, हाथ छालन छाले हो गए। कभी द्रौपदी पांच पांडवों की पटरानी थी और आज ब्यूटी पार्लर बनी है, वो विराट की पत्नी का श्रृंगार कर रही है। तो ये समय बड़ा बलवान होता है, कभी राजा होता है तो कभी फकीर हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं काल बराबर बलवान है। तब भीष्म पितामह उंगली उठा के और कृष्ण की ओर कहते कहते ये काल इसकी उंगली के ऊपर नाचता है, जहां ये काल के स्वामी ये है, और ये जो कुछ आपसे हुआ ये सब इसका प्लान था, ये आपके कर्मों का कष्ट नहीं है, ये पाप नहीं भोगा है आपने, ये कृष्ण ने आपको जैसे सोने को आग में डाल के कुंदन किया जाता है, जैसे पत्थर को छिन्नी से काट के मूर्ति पूजा की बनाई जाती है, ऐसे इन संकटों से कृष्ण ने आपको निखार के बाहर विश्व में धर्मात्मा प्रकट करा किया, ये इसका काम है, सब इसने किया है ये। इसलिए बेटा तुम्हारे को तो द्वारका नाथ मिले हैं, तुम्हारी प्रजा को अनाथ क्यों करते हो, जाओ प्रजा का राज करो। और भीष्म पितामह ने जैसे कहा और युधिष्ठिर महाराज ने हां कर ली, और उस वक्त युधिष्ठिर महाराज, उस वक्त भीष्म पितामह कृष्ण की ओर देखा और कहा जो योगियों को ध्यान में थोड़ी देर के लिए देखने को नहीं मिलता है, वो आज मेरे अंत समय मुझे दर्शन देने को आके यहां उपस्थित हुआ है, और जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब ये मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े होंगे, और ये सब क्यों इसने मेरे ऊपर क्यों किया, क्योंकि ये पांडवों से प्रेम करते हैं, ये अर्जुन के सखा हैं और मैं अर्जुन का पितामह हूं, तो ये पांडवों के नाते आज कितनी मेरे ऊपर कृपा की है इसने, भक्त के कुल की भी रक्षा करते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाबा अब जाने की तैयारी कर रहा है भीष्म पितामह, तो युधिष्ठिर महाराज को इशारा किया पूछ लो जो पूछना है, हमारा सर मत खाना, फिर जो पूछना है पूछ लो, अभी तुम्हारे को राज धर्म पूछना है, कुल धर्म पूछना है, स्त्री धर्म पूछना है, वर्ण आश्रम धर्म पूछना है। युधिष्ठिर को संकोच होने लगा कि एक सर सैया के ऊपर सोया हुआ, एक एक इंच में बाण लगा हुआ है, इतनी पीड़ा में इस व्यक्ति से मैं कैसे पूछूं, संकोच हो रहा था। लेकिन फिर कहा कि ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं, और भगवान ने एक दृष्टि अमृत भीष्म पितामह के ऊपर डाली, उसकी सारे शरीर की पीड़ा चली गई, और सोए हुए भीष्म पितामह ने एक ये पहला प्रवचन है जो सोए हुए दिया है, सोए हुए प्रवचन किया है, और सारे ऋषि सुन रहे हैं। परशुराम उनका गुरु अपने शिष्यों को लेकर आया था, शिष्य कहते थे गुरु जी ये आपका भीष्म शिष्य अच्छा नहीं है, आपके साथ लड़ाई किया, आपकी बात नहीं माना, आपकी बात कहने के ऊपर अंबिका से शादी नहीं की, अंबा से शादी नहीं की, तो आज कह रहे थे परशुराम चलो मेरे शिष्यों देखो साक्षात भगवान श्री कृष्ण और कितने ऋषि उनका उपदेश सुनते हैं। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था जो धर्म के ऊपर अटल रहा है, और वो महाभागवत है, 12 महाजनों में एक महाजन है भीष्म, और भगवान का नित्य दास रस का भक्त है। तो परशुराम भी जी वहां बैठे हुए थे और सोए सोए प्रवचन किया, राज धर्म कैसा होना चाहिए, वर्ण आश्रम धर्म हो कैसा होना चाहिए, राजा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं कभी पूछा था कि भाई 4 वर्ण वाले 100 रुपया चुराते हैं, ब्राह्मण चुराता है, क्षत्रिय भी 100 चुराता है, वैश्य और शूद्र भी, तो क्या दंड देना चाहिए। तो दुर्योधन को कहा गया बोले सबको 100 रुपया चुराया है तो 100 जो भी उसको सबको बराबर का दंड देना चाहिए। तो युधिष्ठिर से पूछा पर नहीं, ब्राह्मण 100 रुपया चुराए तो उनको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, जो दूसरों को धर्म सिखाने वाला चोरी करेगा तो फिर लोग सीखेंगे कहां से, वो जानते हुए उसने किया है। और क्षत्रिय को दूसरी की प्रॉपर्टी रक्षा करनी चाहिए, वही चोर बने तो आज जीवन कारागृह दे देना चाहिए, और वैश्य जो मेहनत करके कमाना चाहिए वो किसी की चोरी करे तो उसको बड़ा शूदर तो है, उसको अकल नहीं है तो उसको काहे की सजा देना, उसको सेवा करके 100 रुपये का काम करा लेना चाहिए। लेकिन तीन चारों का एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंधा कानून नहीं है। तो जो जानता है वो पाप करे उसके ऊपर दंड ज्यादा है, जो अनजान है वो पाप करे वो अलग चीज है। तो ये राज धर्म में कैसे राजा को निर्णय लेना चाहिए। एक बार महाभारत में आता है कि एक दो व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज के पास न्याय के लिए आए और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। एक व्यक्ति ने कहा, देखो मैंने इससे जमीन ले ली थी, मैं जमीन में हल चला रहा था, अंदर से धन निकला है, तो धन तो मेरा नहीं है, मैंने तो जमीन ली थी ना, तो इसको कहता हूं धन ले लो। ये कहता है धन मुझे नहीं चाहिए, मैंने जमीन दे दी तो धन मेरा थोड़ी है, जो जमीन के अंदर है वो तुम्हारा है, मेरा कैसे है वो। वो कहता है धन ले लो, वो कहता मैं नहीं लूंगा। महाराज युधिष्ठिर चिंता में पड़ गया, ये क्या करूं। भगवान ने कहा इनको बोलो कि ये धन यहां रख जाओ अभी सरकारी खजाने में, 2 महीने के बाद आना, फिर आपका निर्णय करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आजकल आज तक हमारा नियम है कि निर्णय हम तो उसी वक्त देते हैं, कल मैं नहीं रहूं और निर्णय में देर हो जाए तो। भगवान ने कहा मैं कहता हूं रख दो। वो चले गए तो भगवान से पूछा कि आपने ऐसे क्यों कहा। बोला 2 महीने के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा और तब ये दोनों उल्टा कहेंगे आपको। वो कहते मैंने जमीन बेची थी, धन थोड़ी बेचा, तो मेरा धन मेरे को दो। 2 महीने के बाद इनका मन दिमाग उल्टा हो जाएगा और जब वो आए तब उनको कहना कि ये धन आपकी कन्या जो है उसको दान कर दो, आप दोनों का नहीं, जो रात का है जब उसको सेवा में लगा देना, झगड़ा खत्म कर देना, जो सेवा के काम में धन को लगा। लेकिन 2 महीने के बाद ये उल्टा बोलेंगे आगे। एक नाव चलाता था लोगों को दूसरे पार ले जाता था, तो बहुत बूढ़ा था एक। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, कभी पूछते हैं कि आपने तो 80-90 साल जिए हो, दुनिया में कई राजा महाराजा बदलते देखे, समय देखा, आपको क्या आश्चर्य लगता है। पर जब मैं नौजवान था, 15-16 साल का नाव चलाता था, तो एक व्यक्ति यहां से गया था और तीर्थ जाते हुए मैंने उसको नदी पार कराई थी, तो वो अपना धन यहां भूल गया था और वो 15-20 दिन के बाद तीर्थ से वापस आया और मेरे को कहा मेरा धन भूल गया और वही नाव में पड़ा था, कई यात्री चढ़े उतरे, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया और वह जब आया उसको दे दिया। ये आज से 60 साल पुरानी बात है वो कह रहा था। और अब 2 साल पहले की बात है, एक आदमी अपना गमछा भूल गया, वो उतर के 1-1.5 घंटे के वापस आया और वो गमछा पता नहीं कहाँ चला गया, हमने कहा दिखाई नहीं हमने। इतना बड़ा अंतर आ गया है इतने सालों में। पहले किसी की चीज को कोई हाथ नहीं लगाता था, अभी पराई चीज मिले तो अपनी चीज को कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो ही पहले इस्तेमाल कर रही है, तो पूरा सिस्टम बदल गया है। हरे कृष्ण। सो स्त्री धर्म का बहुत बड़ा, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी रहा है, ब्रह्मचारी जंगल में रहना आसान है लेकिन राजमहल के अंदर ब्रह्मचारी रहने के बाद भी नारी धर्म का बहुत उत्तम उपदेश दिया है। बोला नारी पुरुष को धर्म के ऊपर चला सकती है, संयम में रख सकती है और उसकी शक्ति है। प्रभुपाद ने उसको अंग्रेजी भाषा में लिखा है लज्जा, जो चेस्टिटी उसकी है, लज्जा जो है वो नारी की शक्ति। ये वाल जो लज्जा है ये लूज नहीं हो तो नारी विश्व में धर्म की रक्षक है। और कलयुग में तो धर्म के किले की आखिरी दीवार, दुर्ग की आखिरी दीवार नारी है। अगर बच्चों को घर में संस्कार देगी, घर के अंदर भगवान का कुछ पूजा पाठ का कोई धर्म का नेम करेगी तो बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। पुरुष बिचारे काम में सारा दिन जाते हैं, स्कूल कॉलेज में कोई धर्म की पढ़ाई नहीं है। आप माता जी अगर घर के अंदर बैठ के कुछ धर्म का वातावरण बनाओगी तो बच्चों में संस्कार, वो भी पहले कहते थे 15 साल तक, आजकल 11 साल के बड़ा बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, वो बात मानेगा इंटरनेट के ऊपर फ्रेंड्स की और नेट की, आपकी नहीं। इसलिए जो संस्कार देने हैं उन 10 साल से पहले दे दो। जितने 10 साल से पहले अच्छे संस्कार दे दिए आपने, उतना उनको जैसे इम्यूनाइज किया, जैसे पोलियो का ड्राप पिला दिया, टीके लगा दिए। हम तो कहते हैं छोटे बच्चों को बचपन में ये भगीता आदि की शिक्षा दे के कुछ श्लोक याद कराना इनको टीका लगाने के बराबर है, पोलियो पिलाने के बराबर है। पोलियो नहीं पिलाएंगे तो टांग खराब होगी, और धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो दिमाग खराब होगा, मर्यादा कोई पालन नहीं कर पाएगा। और आज आप जाके अपने परिवारों में देख लीजिए कि आज कल के नौ युवक अपने माता पिता की प्रति उनका आदर का भाव कितना है। कितने सुबह सवेरे उठ के चरण छू के अपने काम पे जाते हैं, कितने रात को चरण दबा के सोते हैं। ये दो आपको कसौटी दे रहे हैं, देख लो कि आज संस्कार है कि नहीं है समाज में। जो माता पिता के चरण का स्पर्श करके जाता है वो सुरक्षा का कवच पहन के जाता है, सारा दिन उसको जो संकट आएगा वो आशीर्वाद उसकी रक्षा करेगी। ये बहुत बड़ा सुरक्षा का कवच है, इसको मूर्खता। भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या में, द्वारका की लीला में आएगा, भगवान प्रतिदिन उठ के पहले ध्यान में बैठते, उसके बाद नहा धो के दान करते, और बाहर निकलते पहले पिता वसुदेव को, देवी को प्रणाम करते, फिर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के बाद सुधर्मा सभा जाते। ये भगवान की दिनचर्या है। और हमने कोई 20 साल पहले ये सुना था कथा में, और तब से हमने निर्णय बनाया था जितने बड़े बुजुर्ग हैं गांव में जाएंगे तो उन सबको जाके चरण छू के आएंगे। भगवान ने ये मर्यादा सिखाई है तो इसका पालन करना चाहिए। भगवान को किसी को चरण छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लीला की क्यों कि लोगों को ये मर्यादा में। भरत लक्ष्मण का रोज नेम था, जब तक वो रामचंद्र के चरण दबा के, रामचंद्र कहता सुमित्रा नंदन अब जाके विश्राम करो, तब जाके आराम करते थे, रोज का नेम था। और जिस दिन श्रृंगेरपुर गंगा के तट के ऊपर पहुंचे, लक्ष्मण चरण दबा रहा है और राम जी ने ये कहा नहीं कि सुमित्रा नंदन जाके विश्राम करो, तो कहते हैं कि राम जी थक गए थे, चल के आए थे, इसलिए आए तो रथ में थे। बोला थक नहीं गए थे, आज नहीं कह सकते क्योंकि अब लक्ष्मण को जागते रहने, अब लक्ष्मण का सोना बंद हो गया, अब वो पूरी रात जागेगा तभी उसकी तपस्या होगी, तब मेघनाथ का वो जो है उद्धार होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये मर्यादाएं खत्म कब से हो गई, जब तक ये शिक्षाएं खत्म हो गई। तो भीष्म पिता मैंने नारी के लिए बहुत बड़ा उपदेश दिया है, और उसके बाद जब समय उचित आया तब भीष्म पितामह ने जो हजारों युद्धों के अंदर विजयी हुए थे, हजारों युद्धों के अंदर विजयी हुए थे और विश्व के ऊपर सब विषयों के ऊपर बोल सकते थे, सब जगह से अपने मन को एकाग्र कर लिया, और एकाग्र मन को करके और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने के लिए 11 श्लोकों में भीष्म देव की प्रार्थना है, इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। स्तुति मतलब जो स्वयं वो खुद करें, स्तोत्र का मतलब किसी और ने स्तुति की है जिसको हम गाएं, तो ये स्तुति है भीष्म पितामह की, स्वयं का प्रार्थना है। अब उसने मन को एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर खुली आंखों से उनके मुखमंडल का अमृत पीते हुए भीष्म देव कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभुन मने स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपयेषु यद्भाव प्रवाह। भगवान श्री कृष्ण ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, ये वित्रृष्णा, इसमें कोई संसार की तृष्णा नहीं है, ये बहुत शुद्ध है, पवित्र है। इस बुद्धि को मैंने संसार में कहीं भटकने नहीं दिया है। और कल्पिता उपकल्पिता मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। वैसे आपको जरूरत नहीं है इसकी, ये सारी प्रकृति का प्रभाव ये आपसे चल रहा है, सृष्टि कर रहे हैं आप, पालन कर रहे हैं, आप यदुवंशियों में श्रेष्ठ सात्वत पुंगवे, सात्वत का मतलब भक्त, यदुवंशी, पुंगवे मतलब उनके, और विभूमन आप महान हो, और मैं आपको ये मेरी बुद्धि, ये मेरी क्वारी कन्या है, इसको मैं आपको कि दुनिया की कोई बात मुझे दिखाई न दे, सुनाई न दे, ऐसा मेरी बुद्धि आप में तलीन हो जाए। और इसके बाद कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण का युद्ध रूप याद आया, वीर, अब वीर रस, क्योंकि भीष्म पितामह क्षत्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण के वीर रस का दर्शन कर रहे हैं। युधि तुर्ग रजो विमुधुर विश्व कचलुलित संवा शर्म कया, और आपने उसको उपदेश गीता का दिया, और जब आप बीच में आए तो आपने अपनी नजर ऐसी सामने वाली सेना के ऊपर डाली, बलयो रथम निवेश स्थितम पर सेनयोर अक्षणे, सामने वाली सेना को आपने दृष्टि डाली, हृत्वा हृतवती पार्थ सके, उनका तो आपने प्राण ही ले लिया, उनको मुक्त ही कर दिया। तो किसने मारा? उनको वो सब मुक्त हो गए। और आगे फिर कहते हैं, ये सारे श्लोकों का भाव तो बहुत दिन लग जाएंगे करने को, अपने को आप एक जल्दी बढ़ना है। देखिए श्लोक ये मुख्य पढ़ते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम उपलब्धो रथस्थ धृत रथ चरणो अभिरचलन गोर हरे रे वहन तुम इभम गतुत्रय। हरे श्री कृष्ण, आपने बोले तुम्हारे को एक वरदान दिया था, याद है जब आप जब वनवास में थे तो एक दिन भीम को जलाने के लिए दुर्योधन वाले सारा एक पिकनिक पार्टी करके और फ्राई करके पकोड़े पूरी बना रहे थे, और हवा भीमसेन की तरफ डाल के उसके नाक में जाए कि पेट में दर्द हो, और उस दिन दुर्योधन को चित्ररथ गंधर्व ने बंदी बना लिया था और कर्ण आदि रक्षा नहीं कर पाए, तब आपको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा मेरे वचन की रक्षा करने के लिए, भगवान को नेम बदल, भगवान नेम बदल लिया, अपना वचन तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा की। और ऐसा भीष्म ने उस दिन युद्ध किया कि अर्जुन धनुष बाण चढ़ाए उससे पहले प्रत्यंजा कटे, दूसरा प्रत्यंजा लगाए उससे पहले कट जाए। अब अर्जुन का तो संकट आ गया, और कृष्ण भगवान अब अर्जुन की रक्षा के लिए एकदम कूदे रथ से नीचे, और नीचे कूदते ही एक रथ के टूटे हुए पहिए को उठाया और भीष्म की ओर ऐसे गई उनसे मिलने। प्रणय, फिर प्रणय गीत गाया, और निरीक्षण कल्प उन्माद, फिर पागल जैसी हो गई। जब भगवान अलग हो गए तो भगवान का कृत मनु कृत वर्त्य, भगवान जैसी अभिनय करने लगी, और उसके बाद उन्मत अंधा, फिर तो उन्मत होके गाने लगी प्रकृतिम। और कहते हैं पांचों अध्याय रस, एक एक शब्द में एक रास के अध्याय का वर्णन है। भगवान के सबसे प्रिय भागवत का हृदय है रास पंचो अध्याय, उसका एक श्लोक में भीष्म पितामह ने पाठ किया, रास यहां शाम हो गई तो यात्रा को विश्राम दे दिया, विराम दे दिया, संध्या वंदन आदि किया, और अड़ोस पड़ोस के शहर गांव के लोग आते थे, भगवान का दर्शन होता, शाम को सत्संग होता, दूसरे दिन प्रातः नहा धोके संध्या वंदन करके पूजा करके फिर सफर आगे जारी होता। और जैसे गुजरात से आगे अपने आनर्तान, आनर्तान द्वारका का पुराना नाम है आनर्त देश, और आनंद महाराज आनर्त के नाम के पीछे की रिंग टोन बदलते हैं, एक टोन भक्तों की विजय के लिए बजाते हैं तो प्रसन्नता का होता है, और जब छत्रों के संहार के लिए बजाते हैं तो बड़ा भयानक होता है। तो अभी सारे दोनों तरफ से खड़े हो गए स्वागत के लिए, तो भगवान ने बड़े बुजुर्ग जो आए थे उनको प्रणाम किया, बराबर वालों को गले मिले, और किसी को आंखों से ऐसे आशीर्वाद दिया, किसी को हाँ कहा, और भगवान अपने महलों में गए। रानियों ने जो भगवान के विरह में अपने आसन पे व्रत धारण करके बैठी थी अपने छोटे छोटे बालकों को भेजा, बालकों को भगवान ने गले लगा, एक मांडुक ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों ने राजा का घोड़ा बांध दिया, तो राजा के सिपाहियों ने चोरों के साथ मांडुक ऋषि को पकड़ लिया, चोरों को सूली के ऊपर चढ़ा दिया और मांडुक ऋषि को ऊपर बिठाया, तो सूली उसको सूली का मतलब पहले एक बहुत तेज कीला होता था, उसके ऊपर आदमी को बिठाते थे और सर के ऊपर से निकलता था तो मर जाता था, जैसे आजकल लोग जो है ना वो कौन साधु बोला वाल्मीकि है अर्जुन, भीमसेन जाके निमंत्रण दे के आओ। वो गए तो बस्ती तो गरीबों की थी, लेकिन तुलसी के सामने बैठा तिलक लगा हुआ जप कर रहा है, कहा भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है कल आप युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में प्रसाद लेने आना। अरे महाराज मेरे को क्यों बुला रहे हो? बोला भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो सर नीचे हो गया कि भगवान ने मेरा दुनिया में अब क्या कर दिया है, मेरा बुलाया और कहा कि भैया आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, भाई भी हैं, अब संकट हमारे ऊपर आ गया है, पांडव वापस आ गए हैं, क्या करें, कैसे राज दें। विदुर ने कहा आपका बेटा ये दुर्योधन कुल का कलंक है, कुल के विनाश का कारण बनेगा, और उंगली अगर खराब हो और सारे शरीर को खतरा हो तो उंगली को काट देनी चाहिए, आपको इसको निकाल दीजिए नहीं तो कुल का विनाश होगा। और उस वक्त दुर्योधन अंदर प्रवेश किया और शकुनी विदुर ने समाचार पूछा द्वारका का, और जब कृष्ण के स्वधाम जाने का सुना, और कृष्ण ने जाने से पहले उद्धव को भागवत का उपदेश दिया था यह सुना, तब विदुर ने कहा मुझे वो उपदेश सुनाओ उद्धव भाई। उद्धव ने कहा यह मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन मेरे सामने जब भगवान मुझे उपदेश दे रहे थे उस वक्त मैत्रेय ऋषि आए थे, और भगवान ने मेरे सामने मैत्रेय ऋषि को कहा था कि विदुर को आप उपदेश देना, तो आप हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। ये सुन के विदुर की आंखों से प्राण वापस आ गया, और विदुर दिन में बैठ के तीर्थों की कथा बताते थे और रात को युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को कहते थे आप अभी तक राज में क्यों पड़े हो? और धृतराष्ट्र कहता था देखो पहले युधिष्ठिर, पहले दुर्योधन मेरी मानता नहीं था, उसमें मोह हो गया था, लेकिन अब तो ये महाराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा के बगैर कुछ काम नहीं करता है, मुझे पिता के समान समझता है। विदुर कहता है पहले समुद्रों से हीरे मोती मिलते थे, धरती से उपजाऊ होता था, बहुत प्रजा सुखी थी, और समय आने के ऊपर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, बहुत बड़ी प्रशंसा से पांडवों के आज घर में एक ही बहुत समय के बाद बालक पैदा हुआ है, बड़ा दान पुण्य किया, पंडितों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, गौ दान किया, ब्राह्मणों को सोना चांदी धरती दिया और उसका जन्म कुंडली पूछा तो कहा ये तो इक्ष्वाकु जैसा राजा बनेगा, राम जैसा शीलवान होगा, अर्जुन जैसा धनुर्धर होगा। कर दीजिए तो फिर आप, और परीक्षित ने भगवान को पहचान लिया, इसने मेरी रक्षा की थी। और इसके बाद कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा राज तो कृष्ण ने दिया है, अब कृष्ण का आगे का क्या प्लान है, अब क्या उनकी योजना है, अर्जुन जाओ उनसे पता करके आओ। अर्जुन द्वारका गया, बहुत समय तक आया नहीं, तब तक अपशुकन होने लगे महाराज युधिष्ठिर को, गाय आंखों से आंसू बह रही है। और रात के समय मेंढक कौवे आप नहीं करेंगे तो ये मुकुट मेरा नीचे पड़ा है। अर्जुन तो पहले मुकुट उतार के ही आए थे। नकुल सहदेव ने कहा भैया हमको राज करने के लिए नहीं कहना। तो ये पूरी महाभारत के पांच भाई एक मुट्ठी की पांच उंगली की तरह है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। राज की लालच नहीं है कि आप नहीं राज करोगे तो भीमसेन राज करेगा, नहीं भैया हम साथ चलेंगे। और ये समाचार अंदर में गया है और कुंती ने कहा है कि अर्जुन मेरे पास क्यों नहीं आया, पहले मेरे को प्रणाम करता है तब जाता है बड़े भाई के पास। के ऊपर पांव लड़काता हुआ, तीन आधे कटे हुए टांगों से बैल खड़ा था और दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और जिसको योग की सिद्धियां होती है भक्ति का प्रभाव से, वो उन पशुओं की भाषा को भी परीक्षित जानते थे। परीक्षित का पहले भगवान का तो जन्म से पहले माँ के गर्भ में मंगला आरती का दर्शन हो गया, फिर परीक्षित को पशुओं की भाषा जानने को आती थी। वो बैल पूछ रहा था कि गैया तुम रो क्यों रही है, लोग तुम्हारे बच्चे को मार के खा जाते हैं, अरे तुम्हारा दूध निकालने के बाद तुम दूध नहीं देती हो तो लोग कहते हैं कि कलयुग को मार दिया होता परीक्षित महाराज ने तो हम कलयुग के संकट से बच जाते। तो कहते हैं भागवत बच्चों परीक्षित महाराज भागवत पुरुष था, उसने कलयुग में अच्छाई देख ली। बोला कलयुग में क्या अच्छाई देख ली, बोला अच्छे आदमी को सब में अच्छाई दिखती है। उसने देखा कलयुग के अंदर जो लोग न तपस्या कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न दान कर सकते हैं, केवल भगवान के नाम से भगवान को पा सकते हैं, तो कलयुग तो बहुत अच्छा युग है, जो तीन युगों में नहीं मिलता था कलयुग में सरलता से मिल जाएगा। और जब ये कहा सोने का हाथी दान दिया, आपको हाथी का फल मिल जाएगा, लेकिन आप करके देखो कल नहीं कर पाओगे, कलयुग आपको ये करने ही नहीं देगा, आप मन से भी किसी को कुछ दो नहीं उतरेगा आप। कलयुग ऐसा होशियार हो गया, हम कई बार कह चुके हैं हमको ही दूसरे दिन दान करने याद नहीं आता। अरे कर दिया करो रोज का कुछ ना कुछ, मन से आपके अकाउंट में लिखा जाएगा, लेकिन आप करी करो, कलयुग करने ही नहीं देगा। और बोला सुबह सवेरे उठ के नाम लोगे तो फल मिलेगा, कलयुग ने मैं उसको उठने ही नहीं दूंगा, ये उठेगा लोगों को दुर्घटना से बचाने के लिए कहा है। ये भागवत का सिद्धांत है, ये धर्म के नियम है, इनके विरुद्ध पाप है। और जिसमें कलयुग का निवास है, जहां ये चार चीजें हैं वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज बाहर तो है ये चीजें, आपके राज में नहीं मिलेंगी, और एक स्थान दे दो। बोला सोने में रहो, जहां संग्रह हो धन का हो वहां रहो, जहां धन होगा वहां कलह होगा, झगड़ा होगा। कलयुग का मतलब है कलह, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा। लेकिन कलयुग का दूसरा अर्थ निकाला है आचार्यों ने, पिताजी की समाधि खुली, बोला बेटा रो क्यों रहा है, किसने तुमको क्या तकलीफ हो गई, किसने अपमान किया, किसी ने मारा, भूखा है क्या। बोला नहीं नहीं आपके गले में सांप। बोला क्या हुआ ये सांप, कोई बात नहीं कभी हार डालते हैं कभी सांप डालते हैं लोग, साधु के लिए दोनों समान है, इसमें क्या। बोले महाराज डालने वाले को मैंने पिताजी दंड दे दिया। बोला बेटा तुमने बहुत गलत किया, आज तुमने धर्मात्मा एक महाराज को जो इस धरती के ऊपर है उसको तुमने दंड दे के बहुत बड़ा कच्चा काम किया है, ब्राह्मण के शक्ति का दुरुपयोग किया है, मैं इसका अनुमोदन नहीं करता हूं। आपके लिए महाराज वापस लौट के आए, ऋषि कुमार का स्वागत किया। ऋषि कुमार को कहा कि मेरे को दुख है, बहुत खेद है कि मैंने आपके गुरुदेव के गले में मारा सर्प डाला, मेरे से मैं दंड के अपराध किया है, मेरे को दंड मिलना चाहिए। और शिष्य ने कहा महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हमारे अनजान बालक ने आपको 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप दिया है, हम आपके कल्याण की कामना करते हैं, आपकी सदगति हो, आप अपनी व्यवस्था। सब उठ के खड़े हो गए। परीक्षित महाराज ने कहा आज भगवान श्री कृष्ण ने ही आपको यहां भेजा है, और कुछ शास्त्रों में तो लिखा है कि श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए, और क्यों भेजा है कृष्ण ने आपको, क्योंकि पांडवों से कृष्ण प्रेम करते थे और पांडवों का मैं वंशज हूं, इसलिए मेरी रक्षा के लिए आपको भेजा है, और आप जैसा महात्मा इस वक्त आए मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि जिसका अंत समय हो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सब लोगों के लिए कल्याण क्या है, और जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। यहां